6 फरवरी 2022 को स्वयं सरस्वती कहे जाने वाली लता मंगेशकर इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गईं। लता जी के जीवन के अनछुए अनदेखे वो पहलू जो उनके सार्वजनिक जीवन से दूर ही रहे, यतीन्द्र मिश्र ने अपनी 640 पन्ने लंबी पुस्तक लता सुरगाथा में पिरोए हैं। इस पुस्तक को अपनी मौलिकता और गूढ़ शोध के लिए 2017 में भारत के राष्ट्रीय सम्मान स्वर्ण कमल से नवाजा गया। आज लता जी को याद करने, उनके पसंदीदा गानों की, नगमों की और किस्सों की बातें करते हुए यतीन्द्र जी बताते हैं कि कैसे लता सुरगाथा पुस्तक के बीच पड़े। यतीन्द्र जी का संबंध अयोध्या के राज परिवार से है। यतीन्द्र बताते हैं कि उनकी दादी स्वर्गीय राजकुमारी विमला देवी जी उन्हें लता जी के गीत लोरी के तौर पर सुनाती थी।
वो बहुत गाने गाती थी, बहुत संगीत में निष्णात, तो उनकी ही आंचल में दुबका हुआ तो गाना गाती रहती थी, घनश्याम मने चाकर राखो जी और पियाते कहां गए नेहरा लगाए। तो मुझे लगता था कि ये सब भजन गा रही। जब धीरे धीरे जवान होने शुरू हुआ, किशोरावस्था आई, 9th-10th क्लास में आया और थोड़ा फिर म्यूजिक की तरफ रुझान हुआ, तो ये महसूस हुआ कि अरे ये तो लता जी के गाने हैं, तो धीरे धीरे लता जी के मोह में पड़ा।
उदयपुर में यतीन्द्र जी के पिताजी की एक मुलाकात ने उनके और लता जी के बीच पारिवारिक संबंध बना दिए। बचपन से ही लता जी के दीवाने रहे यतीन्द्र ने लता जी से उनके अनुभवों को एक किताब का रूप देने का आग्रह किया। प्रकाशक अरुण महेश्वरी और अदिति महेश्वरी गोयल ने किताब लिखे जाने से पहले ही इसे वाणी प्रकाशन से छापना नक्की कर दिया। पर प्रकाशक और लेखक तो तैयार थे, लेकिन लता जी ही नहीं मानी। उनके लता सुरगाथा के लिए हामी भरने का किस्सा भी बड़ा रोचक है।
फिर एक साल ऐसा हुआ कि लता की 80 साल की हो, तो लता जी का HMV एक कंपाइलेशन बना रहा था 80 गाना, तो उसमें एक गाना था वो मिल नहीं रहा था HMV के आर्काइव में लता जी को। तो एक दिन उनका ऐसे ही फोन आया, उनके सेक्रेटरी का, दीदी बात करना चाहती है लैंडलाइन। तो मैंने पूछा कि बताएं, तो उन्होंने कहा बेटा वैसे तो एक फिल्म है, लेकिन आपके पिताजी भी तब पैदा नहीं हुए होंगे जबकि बात है, पता नहीं आपको होगा कि नहीं, मुझे लगा आप इतनी बात मुझसे करते हैं तो मैं पूछूं, शायद आपको जानकारी हो, तो आप बताएं। तो उन्होंने कहा एक गाना है जोगिया से, तो जैसे उन्होंने जोगिया से कहा तो मैंने जोड़ दिया पीछ किए दुखो गर्म कोट पंडित अमरनाथ, फिर उसमें एक गाना है नन्हा मोरा डोले डोले अंगैया, तो बड़ी खुश हो गई। फोन बोले अरे तुमने इतना रिसर्च कर रखा है। मैंने कहा मैं आपके एक एक गानों का जहां तक मैं समझता हूँ मैंने कलेक्शन कर रखा है और मैं एक एक 100-100 बार सुन चुका हूँ। तो मैंने पूरे गर्म कोट पिक्चर के 5-6 गानों का एक CD एक MP3 बना करके उनको कुरियर, वो मिला उनको, वो बहुत खुश हुई और उसके तुरंत बाद उनका फोन आया कि अब तुम अपनी किताब शुरू कर सकते। अब यहाँ वैशाली मुझे दो बात समझ में आती है, तो मैंने कभी लता जी से पूछा नहीं। तो पहली बात तो ये कि वाकई क्या उनके पास गाना नहीं था जो मुझसे मांग रही थी, या वो एक बड़े इंसान का तरीका था मुझे टेस्ट लेने का।
सुर की ये पुरखेन अपने संगीत के मामले में जितनी सख्त थी, असल जीवन में उतनी ही सौम्य, उतनी ही विनम्र थी। यतीन्द्र जी बताते हैं कि 7 से 8 साल लगभग हर शाम बात होने के बाद भी उन्हें एक शाम ऐसी नहीं याद जब लता जी ने किसी भी सह कलाकार या निदेशक की बुराई की हो, लेकिन केवल यही एक बात उन्हें बड़ा नहीं बनाती थी। और भी किस्से हैं।
जैसे लता जी से फोन पे ज्यादातर रिकॉर्डिंग होती थी, तो शाम 7 बजे के करीब वो बात शुरू करती थी, कभी 8 बजे तक, कभी 7:30, कभी 9:15, 9। एक चीज जो मैंने उनसे सीखी, जो हमारी पीढ़ी को सीखनी चाहिए और आने वाली, कि रोज का भी फिक्स मामला था कि 7 बजे से बात। लेकिन लता जी क्या करती थी कि अगर किसी दिन बात नहीं करना है, किसी दिन व्यस्त है, किसी दिन बीमार है, तो ये नहीं होता था कि सुबह 7 शाम 7 बजे मैं जाऊं तो वो कहने कि आज बात नहीं करेंगे, आज मूड नहीं है, आज मौका नहीं। मेरे पास हर हाल में 12-1 बजे तक खबर आ जाती थी, चाहे उनके सेक्रेटरी के माध्यम से, चाहे लता जी के व्हाट्सएप संदेश से, चाहे उनके फोन से, कि बेटा आज फलना व्यस्तता है इसलिए आज रहने दीजिए, आज बात नहीं करेंगे, तो आप अपना काम कर लीजिए। मतलब उनको दूसरे के समय की कीमत। दूसरी बात ये थी कि मैं फोन करता था, जब तक मैं नमस्कार कहूं, जब तक मैं प्रणाम कहूं, तब तक वो प्रणाम यतीन्द्र जी आशीर्वाद कैसे हैं, मतलब होड़ लगी रहती थी कि कौन पहले अपनी ग्रीटिंग्स देता। अब वो दिल लता मंगेशकर है, मैं एक अदना सा लेखक हूँ, लेकिन उन्होंने कभी मुझे वैशाली ये मौका नहीं दिया ये समझने का कि मैं दिल लता मंगेशकर से बात कर रहा हूँ।
लता जी के प्रिय संगीत निदेशकों के बारे में यतीन्द्र जी कहते हैं,
ये बहुत मजेदार सवाल है वैशाली, लेकिन मुझे लगता है कि वो परफेक्ट सिंगर थी और प्रोफेशनल भी बहुत थी। तो उन्होंने ये तो मुझे कभी नहीं बताया कि कोई फला म्यूजिक डायरेक्टर के साथ मुझे कम पसंद आया, या जैसे मैं कुछ ऐसे अननोन अनहर्ड म्यूजिक डायरेक्टर्स का नाम लूंगा जो लता जी के करियर में बहुत मुकाम नहीं रखते, जैसे अविनाश व्यास हैं, लक्ष्मीराम तमर हैं, वहां पर जमाल सेन हैं, गणेश हैं, जिनके बहुत लोग नाम नहीं जानते हैं, नाशाद हैं, लेकिन लता जी ने उनके लिए भी बहुत बाकमाल गाया और बहुत इज्जत से नाम ले, और उनके पसंद के लोगों में जिनसे वो बहुत इन्फ्लुएंस थी, शंकर किशन, एस डी बर्मन, अनिल विश्वास, सलील चौधरी, मदन मोहन, आर डी बर्मन, रहमान साहब और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, हृदयनाथ मंगेशकर, खयाम साहब, जयदेव, चित्रगुप्त, इनके नाम लेती थी, श्री रामचंद्र के नाम लेती थी, बहुत पसंदीदा में जो उनके जो उनको लगता था कि मेरे काम को वो बहुत बड़ा करके देखते थे और कहते थे कि आप इम्प्रोवाइज कर सकती हैं सॉन्ग के बीच में आके, उसमें मदन मोहन थे, जयकिशन थे, सलील चौधरी थे, एस डी बर्मन थे, और बहुत कठिन म्यूजिक डायरेक्टर्स का जब वो नाम लेती हैं कि जिनसे वो डरती थी उनके गाने कंपोज कराने में या उनको बहुत मेहनत लगती थी, तो उसमें सज्जाद हुसैन का नाम लेती हैं, मास्टर गुलाम हैदर का नाम लेती हैं, उसमें पंडित रविशंकर का नाम लेती।
कम लोग जानते हैं कि गाने के अलावा लता जी को खाने का बेहद शौक था, लेकिन यतीन्द्र जी बताते हैं कि उन्हें खिलाने का भी उतना ही शौक था।
मेरा सौभाग्य था कि मैं उनके घर पे जा चुका हूँ और मुझे उनके घर में खाने का और सबका स्वाद का मौका मिला है। बड़े प्यार से इसरार से बैठ के पूरा मेज सजा के खिलाती थी। महाराष्ट्रीयन खाने में बहुत वो निपुण थी। कोंकण खाना उनको बहुत पसंद था, तो एक तरफ इंदौर के गुलाब जामुन और दही बड़े, एक तरफ कोंकण खाना, एक तरफ महाराष्ट्रीयन खाना। मजरू सुल्तानपुरी से उन्होंने, उनकी पत्नी से उन्होंने कोल्हापुरी चिकन बनाना सीखा था। सब चीजों की बात उन्होंने की। मुझे लगता है कि वो स्वाद के नाम पे, स्वर के नाम पे, मैनरिज्म एटिकेट के नाम पे, बिहेव के नाम पे, हाउ टू कैरी योर पर्सनैलिटी, इस सब चीजों में बेजोड़।
लता जी की छवि सोचें तो रंगीन बॉर्डर की सफेद साड़ी ही जहन में आती है। यतीन्द्र जी कहते हैं इसका भी एक किस्सा बड़ा रोचक है।
तो बोली, बेटा मुझे शुरू से रंगों से परहेज था। मुझे लगता था कि जैसे मैं होली खेल के आ गई, इतने रंग पड़े हुए हैं शरीर पे, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। और एक दो बार क्या हुआ कि बारिश के मौके पे मैं गई, ऐसे नायलॉन की साड़ी पहन के, प्रिंटेड, जो पहले फैशन होता था अर्ली 70s में, आपकी मदर ने भी पहना होगा, हमारे घर में भी पहना गया है, अक्सर एक्ट्रेसेस पहनती थी। तो मैं एक दो बार ऐसे हुआ कि बहुत बारिश हो रही है तो कॉटन की साड़ी कहीं खराब ना जाए, तो मैं ऐसी सिंथेटिक साड़ी प्रिंटेड कलर की, पेस्टल कलर्स की पहन के चली गई। तो बोले, जो साजिंदे थे, जो बाजा बजा रहे थे, वो बड़े ऐसे ऐसे टेढ़ी निगाह से मुझे देख रहे थे। रिकॉर्डिंग हुई, सब हुआ, बड़ा मुझे अजीब लगा। फिर एक ने मुझे कहा, तबले वाले ने मुझे टोका, कहता भाई ये आज आप क्या पहन के आ रहे? तो उन्होंने कहा, अरे कुछ नहीं दादा, आज तो इतना बारिश हो रहा है तो मैं ऐसे आ गई। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें आप अपनी लता भाई नहीं, आप तो व्हाइट साड़ी में ही अच्छे। तो कुछ बोली नहीं, घर आए तो उन्होंने कहा, हे भगवान, अब तो मेरा पहनावा ऐसा सिग्नेचर बन गया है कि मेरे साथ के साजिंदे भी टोकते। फिर उन्होंने कहा, फिर चाहे जो हुआ, फिर उसके बाद फिर मैंने कलर प्रिंटेड साड़ियां नहीं पहनी।
सुर सम्राज्ञी कहे जाने वाली लता जी के भी अपने छोटे छोटे विश्वास थे, मान्यताएं थी। यतीन्द्र जी कहते हैं कि यही मान्यताएं उन्हें आम लोगों के और करीब ले आती थी।
लता जी के साथ क्या था कि जैसे वो बहुत धार्मिक थी, तो वो एक उनका अपना एक भाव जो था धार्मिकता का, कि बिना पूजा किए नहीं निकलना, बिना रियाज किए नहीं निकलना, बिना माता पिता को प्रणाम किए, उनकी तस्वीर को प्रणाम नहीं निकलना। और बहुत सादगी से आती जाती थी, बहुत कभी कुछ उन्होंने बहुत ज्यादा अपने साथ कोई ढोया नहीं, अपने नोटबुक, अपने नोटेशन की कॉपी रखती थी जिसमें कोई गाना वगैरह नोट करना, कलम जरूर रहती साथ में लता जी। और सुपरस्टिशियस थी कि वो लंदन गई रॉयल अल्बर्ट हॉल में, पांच दिन की कंसर्ट है, तो पांच कई तरह की साड़ियां वाड़ियां लेके, पहली साड़ी जो पहनी कंसर्ट में, तो वो बहुत सुपर हिट हो गया प्रोग्राम, तो हर दिन वही साड़ी प्रेस करा के पहनती थी। तो लास्ट डे ऑर्गेनाइजर्स ने ठोका कि आप एक ही तरह के सब प्रोग्राम हो रहे हैं, साड़ियों में फोटो आ रही है, तो आपको कुछ चेंज करना चाहिए था। तो हंसी बोली, मैं अटैची भर के लाई, लेकिन मेरा पहले दिन पहनने पे वो प्रोग्राम अच्छा चला गया है, तो मुझे लगता है कि मैं दूसरी साड़ी पहनूंगी कि प्रोग्राम खराब ना। लता जी बहुत बड़ी गायिका थी, लेकिन उनको लगता था कि मेरे गाने की तैयारी तो ठीक है, लेकिन ये जो बहुत कामयाब हो गया, इसमें साड़ी कहाँ।
हर व्यक्ति को कोई ना कोई दुख रहता है। लता सुरगाथा के सफर के दौरान लता जी ने अपने कुछ दर्द भी बांटे,
और बार बार कहती थी कि मैं जो कर पाई वो मेरे पिताजी देख नहीं पाए, दूसरा मैं अपने पिताजी की तरह गा नहीं पाई, दूसरा उनके परिवार में मराठी नाट्य संगीत का, ड्रामे का कल्चर था, तुरंत पैसे कमाने के लिए स्ट्रगल के चक्कर में उनको फिल्मों में आना पड़ा। तो इस बात का रिग्रेट रहता था उनको कि मैं ठीक से बैठ के शास्त्रीय संगीत नहीं गा पाया, शास्त्रीय संगीत की तालीम ली होती, लिया जो था उसको ऊपर से कर नहीं। और एक बात जो सहज स्त्री के रूप में वो कहती थी कि मैं भी आम इंसान, लेकिन कोई डर या दुख देखने नहीं आता, वो अपने गाने के रिकॉर्डिंग की पड़ी है, चाहे मैं कितने भी बीमार हूँ मुझे जाना ही है, काम पे जाना है। तो जैसे हमारे और आपके जीवन में होता है कि अपने करियर में बहुत सारे संघर्ष करते हुए, समझौते करते हुए अपने काम में लगे रहते हैं, अपने हेल्थ को भी स्थगित रखते हैं, लता जी को भी करना पड़ा।
पूछे जाने पर कि लता जी को याद करने का सबसे बहतरीन तरीका क्या हो सकता है, यतीन्द्र जी कहते हैं,
मुझे लगता है लता जी को याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि लता जी की तरह जो लड़कियां, जो लड़के सुरीले बनना चाहते हैं, पार्श्व गायन में नाम करना चाहते हैं, सीखें, गुरुओं से सीखें, फिल्म इंडस्ट्री में जब हैं तो इतना मेहनत करें कि एक सुरीली यात्रा तय करें। लता जी को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि, उनके गानों को हम सुनते रहें, उन्हें जिंदा रखें। भारत की जो राष्ट्रीय चेतना है, जो भारत का कल्चरल इतिहास है, जिससे आजादी के बाद लता मंगेशकर जैसी आइकॉनिक प्लेबैक सिंगर बनती है, उसको उसको ज्यादा से ज्यादा सराहें, उनकी स्मृति को जिंदा रखें। आज एक नया ट्रेंड चल गया है कि बड़े से बड़े महान कलाकार का अवसान होता है तो हम उसके गुरदोष परखने लगते हैं, उसकी विचारधारा परखने लगते हैं, उसकी पर्सनल लाइफ में झांकने लगते हैं। लता जी का अर्थ सुंदर गीतों की एक लंबी न टूटने वाली श्रृंखला है। कोई भी व्यक्ति किसी न किसी विचारधारा से प्रेरित होता है, किसी दूसरी विचारधारा से कम प्रेरित होता है, इसका कतई मतलब नहीं उसका सम्मान ना किया जाए। तो मुझे लगता है कि इन सब क्षुद्रताओं से उठकर एक बड़े कैनवास पे लता जी को सेलिब्रेट करना चाहिए, इन्होंने जो भारत को दिया और जिस तरह से एक सामान्य जीवन से उठ करके अपनी जगह बनाई, विमेन एम्पावरमेंट का एक बड़ा चैप्टर खड़ा किया, उन्होंने मानक बनाए, मानदंड स्थापित किए, उस पर नई लड़कियां चले, उस पर नए बच्चे चले, और किसी भी तरह की गॉसिप पेपराजी से दूर रहते लता जी को शुद्ध अर्थों में एक सांगीतिक हस्ती के रूप में सराहें।